शांति। आप सभी परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव पिता के प्यारे संतान, आप सभी शक्तिशाली महान आत्माओं का राजयोग के इस अनुभूति शिविर के प्रातःकालीन सत्र में परमात्मा हंस मंडली में पधारे हुए आप सभी होली हंसों का हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी महान आत्माओं से अनुरोध है, एक हाथ के ताली से आप सभी तबहन जी का भी स्वागत करेंगे। राजयोग द्वारा कैसे हम जीवन में सर्वशक्तियों से संपन्न बने, इस विषय पर संबोधन करने हेतु हमारे मध्य आए हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं, आज का मनुष्य हर एक क्षेत्र में प्रगति को प्राप्त करने हेतु बहुत ही प्रयास कर रहा है, और अनुभव में आता है कि इतने प्रयास के बाद चांद तक भी पहुंचने का प्लान बना चुका है। तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही रहा है, दूसरी ओर अपने जीवन में तनाव महसूस कर रहा है, भय चिंता महसूस कर रहा है। ऐसे में स्वयं भगवान के द्वारा सिखाया गया राजयोग से कैसे हम सर्वशक्तियों से संपन्न बन इन सारे प्रॉब्लम्स से दूर हो सकते हैं, आइए हम इस सत्र में सुने राजयोग द्वारा कैसे हम अपने जीवन को सर्वशक्तियों से संपन्न बनाएं, इस विषय पर प्रकाश डालें आदरणीय सविता बहन जी।
ओम शांति। राजयोग अभ्यास के विभिन्न सत्रों में अभी तक आप सुनते आए हैं कि राजयोग से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं, क्या लाभ होते हैं, और उसी पर थोड़ा विस्तार से हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि पूरा विश्व ही शक्तियों से संचालित है। अगर मशीनें चलती हैं तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी काम करती हैं। हम आपस में एक दो को सुन पाते हैं, उसके लिए साउंड एनर्जी काम करती है। इस संसार में सोलार एनर्जी, जो सूर्य की ऊर्जा है, उससे भी अनेकानेक कार्य होते हैं। थर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, लेकिन यदि हम मनुष्य के जीवन में देखते हैं तो दो प्रकार की शक्तियां हैं, बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियां। बाह्य शक्तियों में शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति, पद की शक्ति जीवन में कार्य करती है, और आंतरिक शक्तियों में मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, चारित्रिक शक्ति, नैतिक शक्ति, ये जीवन को संचालित करती हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी शारीरिक शक्ति का इतना विकास कर लेते हैं कि वो असाधारण कार्यों को करने की क्षमता रखते हैं। कुछ लोग अपने बालों से ट्रक खींच सकते हैं, दांतों से एरोप्लेन खींच सकते हैं, 500 किलोग्राम तक वजन उठाकर के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं, उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाता है। कुछ बौद्धिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बौद्धिक शक्ति के आधार पर ही अनेकों आविष्कार किए हैं जिससे मानव को बहुत सुख के साधन मिले हैं। वर्तमान समय में भी एक वैज्ञानिक हैं, स्टीफन हॉकिंस, जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं, हालांकि कुछ बीमारी के कारण गर्दन से नीचे उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड है, लेकिन उनकी बौद्धिक शक्ति इतनी अधिक है कि आज भी वैज्ञानिक जगत उनके लोहे को स्वीकार करता है, यानी उनको मानता है। आज भी उनके लेक्चर्स बहुत ही उत्सुकता से सुने जाते हैं। और मानसिक शक्ति के आधार पर, उच्च मनोबल के आधार पर मनुष्य असंभव को संभव करने की शक्ति रखता है। तो हम देखते हैं कि जिनमें भी ये प्रबल मानसिक शक्ति होती है, वो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। राजयोग के अभ्यास से भी हमारी इन आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, और हम जो सफलता अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वो सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भाई बहने हमसे पूछते हैं, बहन जी, यदि हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो क्या कोई विशेष सिद्धियां हमें मिलेंगी? क्योंकि हमारे यहाँ संत महात्मा कुछ ऐसे चमत्कार करके दिखाते हैं कि वो कोई मंत्र जपते हैं और जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वो उनके सामने हाजिर हो जाती है, या वो किसी को भभूत देते हैं और कहते हैं कि ये भभूत लेने से आपका कष्ट दूर हो जाएगा या आपका रोग निवारण हो जाएगा। तो कई बार सचमुच ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि वो लेने वाले की गहरी आस्था पर निर्भर करता है, और इस प्रकार के चमत्कारों से उन्हें नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता या उससे समाज का कोई कल्याण नहीं होता है। और इसीलिए जो सच्चे संत हुए, उन्होंने इस प्रकार की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। स्वामी रामतीर्थ के जीवन की घटना है कि एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे कि देखो, आपके आश्रम के पास ये जो नदी बहती है, इसको मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने चुपचाप सुना, कुछ कहा नहीं। तो थोड़ी देर बाद उनका दूध वाला आया जो नदी पार गांव से आता था। तो उन्होंने सन्यासी के सामने ही अपने दूध वाले से पूछा, तुमने कितने पैसे में नदी पार की? तो उसने कहा, एक पैसे में। उस जमाने में एक पैसा दो पैसा ऐसे चलते थे। तो उन्होंने उन सन्यासी को कहा कि जो काम मेरा दूध वाला एक पैसे में कर सकता है, उस काम को करने में आपने कितने साल लगा दिए? आपने सन्यास क्यों किया है? ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आपने सन्यास किया है, और यही इतने वर्ष आपने साधना की होती तो आज आप ईश्वर के समीप पहुंचे होते। तो जो सच्चे संत हुए, उन्होंने ऐसी सिद्धियों को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। तो राजयोग में भी हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, लेकिन जीवन ही चमत्कारिक बन जाए, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी राजयोग की सिद्धि है। हमारे जीवन में जो भी कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां अंधकार के समान है। जैसे अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, वो प्रकाश का भाव है, और यदि प्रकाश कर दिया जाए तो स्वतः ही अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही यदि हम गुणों और शक्तियों का विकास करते हैं तो स्वतः ही हमारे विकार कमजोरियां समाप्त होने लगते हैं, उनके लिए हमें अलग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हैं तो हम कहेंगे घर घर की स्थिति नरक के समान है। क्यों कहेंगे नरक के समान है? यूं तो हम कहेंगे बहुत विकास हुआ है इस विश्व के अंदर, लेकिन हर घर में आज भी स्वार्थ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, बदले की भावना है, भय है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि घर घर में रामायण और महाभारत चलते हैं। हमारे ये जो दो शास्त्र हैं, ये मनुष्य की दो कमियों पर बने हुए हैं। रामायण ईर्ष्या की कहानी है, हम सब जानते हैं रामायण की कहानी। राजा दशरथ ने जैसे ही राम को राज तिलक की घोषणा की कि कई की दासी मंत्रा उसे ईर्ष्या हुई कि क्यों कौशल्या का बेटा राजा बने मेरी रानी के कई ने। समय पर महाराज दशरथ की प्राण रक्षा की है और महाराज ने उनको दो वर दिए हैं, ये सही समय है रानी के कई को अपने वर ले लेने चाहिए और भरत को राज तिलक होना चाहिए। यही बात उसने रानी के कई को समझाई और उसे समझ में आ गई। उसने वो दो वर लिए, राम को वनवास हुआ और पूरी रामायण की कहानी बनी। महाभारत की कहानी भाई भाई के द्वेष की कहानी है। कौरव पांडव दोनों भाई थे लेकिन कभी भी उनमें आपस में प्रेम नहीं रहा। राज्य और संपत्ति को लेकर हमेशा ही उनमें विवाद था और उसमें चिंगारी डाली द्रौपदी के दो शब्दों ने। कौन से दो शब्द कहे उसने? अंधे का बेटा अंधा। और जैसे ही दुर्योधन ने सुना उसको इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि मुझे अपने इस अपमान का बदला लेना है और इसीलिए उसने षड्यंत्र रचा जुआ खेलने का। और न सिर्फ पांडवों को जुआ खेलने पर मजबूर किया, उन्हें धोखे से हराया और अपने अपमान का बदला लिया और उसके बाद पांडवों को वनवास हुआ। 13 साल वनवास के बाद लौटे तो कहा कि राज्य तो क्या सुई के नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। और परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ और जिसमें पूरे कुल का विनाश हुआ। आज भी हम देखते हैं यही स्थिति है, घर घर में भाई भाई में द्वेष है। और द्रौपदी जैसे एक शब्द तो क्या, हम कितने ही शब्द सारे दिन में बोलते हैं जो दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। तो ऐसी कौन सी शक्तियों का अभाव है जिसके कारण घर घर नरक है, और उन शक्तियों का यदि हम विकास करते हैं तो वही घर घर स्वर्ग बन सकता है। तो आप देख रहे हैं जो शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं उसमें एक विशेष शक्ति है, सहन करने की शक्ति। आज हम किसी की एक छोटी बात को सहन नहीं कर पाते, किसी ने एक कहा तो हम दो कहेंगे, दो कहा तो चार कहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना है या जैसे को तैसा मिलना चाहिए, ऐसा हमारा भाव होता है और उसके कारण कई बार छोटी छोटी बातें विनाशकारी तक हो जाती हैं। फिर हम सोचते हैं हम क्यों सहन करें। हम सहन करेंगे तो हमें ही गलत समझा जाएगा, हमने गलती की ही नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए। अच्छी तरह से उन्हें समझा देना चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है। ऐसे कितने ही अखबारों में समाचार होते हैं आज के समय में कि थोड़ा सा सहन ना कर पाने के कारण क्या परिणाम हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले अखबार में एक घटना थी कि एक बेटा शराब पीकर के देर से घर में आया रात को, और पिता बहुत नाराज हुए कि वो शराब पीकर आया, और नाराजगी में उन्होंने कुछ ऐसा कहा उसको जो बहुत चुभ गया। और वो बेटा शराब के नशे में था, जैसे ही पिता सोने चले गए वो घर में उसने चाकू उठाया और उनको जान से ही मार दिया। अब बताइए, छोटी सी बात है, माता पिता का हक बनता है कि अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो जरूर उन्हें समझाएंगे, लेकिन वो सहन नहीं कर सका। या कई बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे ही एक एयर होस्टेस थी, वो रात को देर से पार्टी से घर में आई तो वही उनके पिता नाराज हुए, और सुबह नाश्ते के समय भी उन्होंने वही बात उसको कही कि उसको समय से घर आ जाना चाहिए। उस दिन छुट्टी का दिन था उसका, और दिन में ही किसी टाइम पर उसने अपने आप को फंदा लगाया और लटका दिया। बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जब सहन शक्ति नहीं होती है तो मनुष्य इस हद तक भी पहुंच जाते हैं कि अपने जीवन के लिए वो विनाशकारी हो जाता है। तो जब सहन नहीं होता है, मनुष्य गुस्सा करते हैं, और मनोविज्ञान कहता है एंगर इज टेम्परेरी इंसैनिटी, गुस्सा थोड़े समय का पागलपन है। जैसे पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, मुझे ये सब करना चाहिए या कहना चाहिए, नहीं। ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है, उसका विवेक पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और जो भी शब्द हम मुख से बोलते हैं उस समय वो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, और इसीलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। कहने वाला शायद भूल जाता है लेकिन सुनने वाला नहीं भूल पाता, और उसके कारण संबंधों में प्रेम समाप्त हो जाता है और कई बार संबंध टूट तक जाते हैं। तो क्यों गुस्सा आता है हमको? किसी ने मेरी बात नहीं मानी या हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं किया, गुस्सा आता है। हम सभी को आता है, किसी को कम किसी को ज्यादा गुस्सा सभी करते हैं। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं अलग हैं। कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं है, कि जरूरी नहीं है हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही दूसरा भी सोचता है, उसका विचार मेरे से अलग हो सकता है। तो हम उनकी भी बात समझने की कोशिश करते हैं, और हम ये देखते हैं कि जिनसे हम अपेक्षा करते हैं इनको मेरी बात माननी चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार के हैं, चाहे वो हमारे वर्क प्लेस के हैं, वो 10 में से 9 बार हमारी बात मानते ही हैं। कोई एक बार ऐसा होता है जब उन्हें लगता है कि हम गलत हैं वो सही हैं, और वो इंसिस्ट करते हैं कि उनकी बात मानी जाए। तो हो सकता है वो सही हो, कभी हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अहम के कारण हम हमेशा ही दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपसी संबंधों में अगर ये आपसी समझ हमारी होती है तो क्रोध की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। फिर हमें गुस्सा आता है काम करवाने के लिए। हम सोचते हैं कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग काम ही नहीं करेंगे, या इन बार बार ये गलती करते हैं, इतनी बार इनको समझा दिया। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो भय के कारण सामने वाला चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता है, काम भी हो जाता है, लेकिन उनकी भावनाएं बदल जाती हैं, और इसीलिए हम जैसा काम चाहते हैं वैसा काम नहीं होगा। और दूसरा, वो कहीं ना कहीं हमसे अवसर ढूंढते हैं बदला लेने का। जैसे ही उनको वो अवसर मिलता है वो हमारे लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, तो उसके भविष्य परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते। और मानो कोई हमसे गुस्से से काम कराता है तो क्या हमें पसंद आता है? पसंद आता है? हम सोचते हैं काम तो करना ही है, पर कम से कम थोड़ा अच्छे शब्दों में प्रेम से तो कह सकते थे। तो जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद है वही दूसरे को भी पसंद होता है। बच्चों पर गुस्सा करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गुस्सा करो, गुस्सा करेंगे जरूर, बच्चे भी भय के कारण चुप हो जाते हैं और आप जो कहते हैं वो करते हैं, वो पढ़ने लगते हैं, आपका कहना मानते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्से में हम ऐसे शब्द बच्चों को बोलते हैं, वो गधा है, नालायक है, बेवकूफ है, ये कभी नहीं सुधरेगा, ये ना होता तो अच्छा था, जो उस समय मन में आता है वो गुस्से में बोलते हैं। और बच्चा किताब उठाकर पढ़ रहा है, आप खुश जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में पढ़ नहीं रहा है। उसके मन में क्या चलता है, मेरे पिता ने मुझे ऐसा कहा, मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा। और फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो आपसे गुस्सा करना सीख जाते हैं, उनको पता है कि अपनी बात मनवानी है तो गुस्सा करो, अब समस्याएं और बढ़ जाती हैं। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है आप जो चाहते हैं वो बच्चे करें तो उन्हें समझाइए, उन्हें समय दें, धैर्य रखना पड़ता है। हो सकता है कि एक बार में आपकी बात उनको नहीं समझ में आती, शायद दो बार चार बार आपको समझाना पड़े। और आज का जमाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो जब तक आपसे कन्विंस नहीं होंगे कि आप जो कह रहे हैं उनको मानना चाहिए, तब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इतना धैर्य हमारे पास नहीं होता है, हम सोचते हैं एक बार समझा दिया ना, इनको नहीं समझ में आता, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, गुस्सा करो। ऐसे ही कोई हमारी निंदा करता है, हमारी कमी निकालता है, तो भी हम सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। पर ज्ञान कहता है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तो निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है, निंदा करने वाला तो हमें सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है, वो मित्र हो सकता है। वो हमें हमारी कमी बता रहा है। कहते मनुष्य का स्वभाव है वो अपनी कमी स्वयं नहीं देख सकता, उसे दूसरे ही बताते हैं उसकी कमी क्या है। तो यदि वो कमी हमारे अंदर है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, 1% होगी, लेकिन कहने वाला उसे बढ़ा चढ़ा कर कहेगा। हाँ, आप ऑफिस में जाते हैं, रोज समय पर जाते हैं, अपना काम जिम्मेवारी से पूरा करते हैं, पर किसी कारण से 2-3 दिन आप समय पर नहीं पहुंच रहे और काम में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो जो आपका क्रिटिक होगा उसे अवसर मिलता है और वो कहेगा ये तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, ये लापरवाह हैं। अब वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर 1% भी वो कमी मेरे अंदर है और हमें समझ में आता है, तो हम दूसरों की वो शिकायत दूर कर सकते हैं और हमारे जीवन में भी प्रगति होती है। पर कई बार लोग गलत फहमी के कारण या ईर्ष्या के कारण भी हमारे बारे में गलत बातें कह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो हम स्पष्ट करें, और यदि स्पष्ट करने जैसी स्थिति नहीं है तो फिर हम उसे स्वीकार ही नहीं करें, उसे अपने मन पर नहीं लें, क्योंकि यदि हम उसे स्वीकार करते हैं तभी हमें दुख होता है। नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन, अगर हम ना चाहें तो कोई भी हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। जब वो कमी हमारे अंदर है ही नहीं तो हम उसे अपने मन पर ले ही क्यों। महात्मा बुद्ध एक बार एक स्थान पर गए, वहां पर उनका विरोधी रहता था, और जैसे ही उसको अवसर मिला वो आकर के उनको जो उसके मन में था महात्मा बुद्ध के बारे में वो कहने लगा, और जब तक वो थक नहीं गया तब तक वो कहता रहा, और फिर चुप हुआ तो उसने समझा अब ये कुछ जवाब देंगे, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन महात्मा बुद्ध बहुत मुस्कुराते हुए शांत भाव से बैठे थे, तो उसे आश्चर्य हुआ, वो उनके सामने गया और उनको पूछने लगा कि आपने सुना नहीं मैंने आपको क्या कहा। तो महात्मा बुद्ध ने उसको प्यार से उत्तर दिया कि देखो भाई, अगर आप किसी को कोई चीज देते हो और अगर सामने वाला ना ले तो वो कहाँ रहेगी। तो वो समझ गया, उन्होंने उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे ही मदर टेरेसा एक बार अपने अपने ट्रस्ट के लिए, क्योंकि वो कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए ट्रस्ट चला रही थी, मिशन था उनका, तो धन की कमी पड़ रही थी तो उन्हें धन की आवश्यकता थी, तो एक बिजनेसमैन के पास वो गए और बिजनेसमैन की उनके बारे में अच्छी राय नहीं थी, तो जैसे ही उनको देखा तो तुरंत ही उसके बारे में उन्होंने उल्टा सीधा जो उनके मन में आया उनको सुना दिया। तो वो चुपचाप सुनते रहे, काफी अपमानजनक बातें थी, लेकिन जब वो चुप हो गए तो उन्होंने बहुत प्यार से उनको कहा कि ये तो आपने मुझे दिया है, आप मेरे मरीजों के लिए क्या दे रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत एक चेक बनाकर, क्योंकि वो प्रभाव पड़ा कि इतना मैंने कहा लेकिन फिर भी इनको अपने मरीजों की चिंता है। तो हमने जब तक उसे स्वीकार नहीं किया तब तक हम उससे दुखी नहीं होते हैं। फिर भी अगर किसी कारण से मुझे गुस्सा आता है तो एक तरीका होता है कि हम उसे थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दें, थोड़े समय के लिए हम उसे टाल दें, और यदि हम कुछ समय के बाद अपनी बात कहते हैं तो दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि सारी गलती सामने वाले की नहीं है, मेरी भी गलती है और हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो परमानेंट ही पोस्टपोन हो जाता है। लेकिन यदि हमें लगता है नहीं, इनकी गलती है और इनको बताना ही चाहिए, अगर नहीं बताएंगे भविष्य में फिर से यही गलती होगी, लेकिन तब तक हमारा आवेश गुस्सा कम हो जाता है और वही बात अब हम शांति से कहते हैं, अच्छे शब्दों में कहते हैं, तो वो बात स्वीकार की जाती है। अगर हम तुरंत गुस्से में कहते हैं तो गुस्सा गुस्से को जन्म देता है और उनकी गलती होगी तो भी वो नहीं मानेंगे, सिद्ध करना शुरू कर देंगे और हमारी समस्या बढ़ जाएगी। गुस्से से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। एक बार ऐसे ही पति पत्नी थे, दोनों ही बहुत गुस्से वाले स्वभाव के, एक गुस्से वाला हो दूसरा शांत हो तो घर में शांति बनी रहती है, स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़ती है, लेकिन जब दोनों ही गुस्से वाले थे तो रोज घर में कलह होती थी और अशांति होती थी। पति तो काम पर चले जाते थे और पत्नी बहुत दुखी रहती थी। तो एक दिन उसकी पड़ोसन आई और उसने कहा कि बहन जी, आज मैंने अपने घर में कथा रखी है, आपको कथा में आने का निमंत्रण, न्योता देने में आई हूँ। तो गई कथा सुनने के लिए, तो देखा एक पंडित जी कथा कर रहे हैं, और कथा सुनने के बाद उसे काफी शांति मिली। तो उसने सोचा क्यों ना मैं पंडित जी से बात करूं, शायद ये मुझे कुछ राय दें। तो उसने अपनी समस्या उनको सुनाई और फिर कहा, तो पंडित ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप उसे मानोगी तो ही मैं बताऊंगा। तो उसने कहा आप जो कहेंगे मैं करूंगी। तो उन्होंने पानी की एक बोतल मंगाई और उसे दिया, कहा देखो जब आपके पति गुस्सा करते हैं आप इसमें से कुछ घूंट पानी अपने मुंह में रख लेना और ये पानी तब तक मुंह में रहेगा जब तक आपके पति बोल रहे हैं, पानी पीना नहीं है। अब वो समझ गई पानी पीना नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब वादा करवा लिया था उन्होंने तो चुपचाप उसने पानी लिया और घर चली गई। अब घर में तो रोज की बात थी, किसी बात पर पति ने गुस्सा करना शुरू किया, वादे के अनुसार उसने आज पानी मुंह में रख लिया, वो बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। और पति ने सोचा कि आज इसको क्या हुआ है, ये रोज तो बराबर जवाब देती है, आज तो चुप है। तो उन्होंने थोड़ा और जोर जोर से गुस्सा किया कि ये भी कुछ बोले, क्योंकि उनको सुनने की आदत थी, लेकिन आज उसने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जितनी भी कोशिश की उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि पानी मुंह में था। दूसरे दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ और फिर उन्होंने गुस्सा किया, आज भी वो शांत थी, उसने पानी मुंह में रखा था। तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो फिर उनको लगा क्या इसने बदल लिया है अपने आप को, तो थोड़ा टेस्ट करने के लिए, हाँ सचमुच क्या बदल लिया है, तो उन्होंने जानबूझ करके भी कोशिश की, पर हर बार वो मुंह में पानी रखती थी और शांत थी। जब उनको पूरा विश्वास हो गया कि इसने अपने आप को बदल लिया है, तो फिर उनका ध्यान अपने ऊपर गया कि मैं शायद छोटी छोटी बातों पर ज्यादा गुस्सा कर रहा हूं, तो मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अपने को बदलना शुरू किया। नेचुरली जब एक जना नहीं बोलता है तो दूसरा भी बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकता है। तो कुछ दिनों में उनके घर में सचमुच शांति हो गई। अब ये बहन इतनी खुश, उसने सोचा कि मुझे जाना चाहिए वो पंडित जी के पास। तो वो गई उनके पास और कहा, पंडित जी मैं नहीं जानती कि मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, सचमुच आपने मेरे नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन वो पानी खत्म हो गया है। तो उन्होंने क्या कहा कि वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो पानी सिर्फ पीने का पानी था और आपको सिखाने के लिए था कि जब आपके पति गुस्सा करते हैं उस समय आप थोड़ा समय शांत रह जाओ। आपने देखा उसके कितने अच्छे परिणाम आपको मिले। तो यदि आप चाहती हो कि आपका घर सदा ही स्वर्ग रहे, तो आप सदा ऐसे ही व्यवहार करो। तो कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी ये कहानी तक ठीक है, लेकिन कोई सचमुच जब गुस्सा कर रहा होता है तो हम चुप नहीं रह सकते, हम सहन नहीं कर सकते। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपसे पूछते हैं हम, कर सकते हैं नहीं कर सकते? जो समझते हैं हम कर सकते हैं वो हाथ उठाइए। देखिए आप ये आज का दिन और ये शिविर का सेशन आप याद रखना, और कभी भी ऐसी स्थिति आए तो आपको ये अपनी प्रतिज्ञा याद रखनी है कि हमने वहां हाथ उठाया था। तो आप अपने लिए ताली बजाइए जिन्होंने ये हिम्मत रखी है हम कर सकते। तो ये शिविर का मैं कहूंगी एक बहुत बड़ी सफलता होगी कि अगर आप इतना भी परिवर्तन अपने जीवन में लाते हैं, और हम कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है किसी भी परिस्थिति में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कल के सेशन में हमने सुना, आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में कि एक पेड़ जब फलों से लगता है तो बच्चे उसको पत्थर मारते हैं और फिर भी उसे क्या मिलता है, मीठा फल मिलता है। तो प्रकृति में भी ये गुण है कि वो पत्थर की चोट सहकर मीठा फल दे सकती है। तो मनुष्य जो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्या वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेम की शक्ति, दया की शक्ति, क्षमा की शक्ति, करुणा, ये गुण हमारे अंदर चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी महान आत्माएं संसार में हुई हैं, जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं, उनके जीवन की यही विशेषता थी कि उन्होंने कभी भी जैसे को तैसा नहीं दिया। किसी ने उनके साथ बुरा भी किया, फिर भी उन्होंने उनका भला किया है। ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी उन्होंने क्या कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उस क्षण में भी उनके मुख से यही निकला कि तू पिता इन्हें क्षमा करना। कह सकते थे वो कि हे पिता तू इन्हें सजा देना, जीवन भर मैंने इनकी इतनी सेवा की है, आज मेरे साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। लेकिन वो दया, करुणा, क्षमा, प्रेम के गुण के कारण ही आज संसार में जितने भी गिरजाघर हैं उसमें ईसा मसीह की भगवान के रूप में पूजा होती है, भगवान का दर्जा उन्हें मिला। हम महात्मा गांधी को महात्मा कहते हैं ऐसे ही नहीं कहते, उनके जीवन के भी अनेकों ऐसे प्रसंग हैं, या जितने भी संत हुए हैं हमारे भारत के इतिहास में, संत एकनाथ के जीवन की घटना है कि एक बार वो महाराष्ट्र से गंगा नदी में स्नान करने के लिए आए, और जब वो स्नान करके लौट रहे थे तो रास्ते में गली में एक छज्जे पर एक पठान खड़ा था और उसको मजाक सूझा, उसने उनके ऊपर थूक दिया, तो वो चुपचाप बिना देखे कि किसने थूका है फिर से स्नान करने चले गए। फिर स्नान करके लौटे, फिर उसने ऐसा किया, ऐसे कितनी बार हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो वो पठान को आश्चर्य हुआ, वो उतर कर नीचे आया, उनके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, आपके साथ जो ऐसा व्यवहार कर रहा है वो मैं हूं, आपको मुझे कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे आपको धन्यवाद देना है, मैं गंगा नदी में स्नान करने इतना दूर से आया हूँ, आज आपके कारण मैंने इतनी बार स्नान किया, नहीं तो मैं एक ही बार स्नान करके चला जाता। अब देखिए सोच ही अलग है, आज अगर हमारे ऊपर कोई थूक दे तो हम कैसा व्यवहार करेंगे? अच्छी तरह से बता देंगे थूकने का मतलब क्या होता है। लेकिन वो संत क्यों कहलाए? क्योंकि मनुष्य की गलतियों को क्षमा करना उनके स्वभाव में, और ये तब होता है जब हमारे मन में असीम प्रेम होता है मानवता के प्रति, और जब हम योग अभ्यास करते हैं तब हमारे अंदर इन गुणों का विकास होता है और हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातों में जिनमें मनुष्य बहुत परेशान होते हैं, अशांत होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उन्हीं बातों को हम सहज अपने जीवन में पार कर लेते हैं। दूसरी जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वो है समाने की शक्ति। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, इन स्थितियों से हमारा जीवन गुजरता है। कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम सफल होते हैं, कभी हम असफल होते हैं। लेकिन जो योगी है वो हर स्थिति में समान रहता है, वो दुख में बहुत दुखी नहीं और सुख में सफलता में बहुत अहंकार में नहीं आता है। उसे पता है हर स्थिति परिवर्तनशील है, का हृदय विशाल होता है और सब कुछ समा जाता है। जैसे इस चित्र में दिखाया है कि सागर में कितनी ही नदियां आती हैं, कैसा भी जल, कैसी भी गंदगी सागर में डालती हैं, लेकिन सब कुछ सागर में समाता है और सागर की सतह फिर भी स्वच्छ रहती है। हल्की वस्तु पड़ती है तो लहरें उसे उठाकर बाहर फेंक देती हैं, और अगर भारी वस्तु पड़ती है तो वो सागर के तले में चली जाती है। तो एक ज्ञानी योगी व्यक्ति का जीवन भी ऐसा होता है कि संसार की अच्छी बुरी बातें हम देखते सुनते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में वही समाते हैं, ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, सार्थक है। कबीर दास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही दिए थोथा दे उड़ाए। यानी एक सज्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप, वो कचरे को फेंक देता है और अनाज को रख लेता है। तो अनाज उपयोगी है, यानी हमारे जीवन में जो सार्थक है उसे ही हम ग्रहण करते हैं। समाने की शक्ति का दूसरा स्वरूप है कि मानो कोई हमारे बहुत निकट के मित्र हैं, वो हमसे कोई सहयोग चाहते हैं, उनके जीवन में कोई समस्या है और वो हमें अपनी बात कहते हैं, और फिर कहते हैं देखो ये मेरी पर्सनल बात है, आप किसी को नहीं कहना, और हम उनको विश्वास दिलाते हैं हम किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा कोई अपना होता है, समीप है, और उसको हमने वो सारी बात कही और फिर हम उनको कहते हैं ये इनकी पर्सनल बात है, आप किसी को मत कहना। अब हम नहीं उसको समा सके तो वो कैसे समा पाएंगे? उनका भी फिर कोई अपना होगा जिसे वो बात कहेंगे, और फिर यही बात जो नहीं फैलनी चाहिए वो फैलती है, और उसी रूप में नहीं फैलती, क्योंकि हर कहने वाला उसमें अपना भाव जरूर मिक्स करता है, उसने क्या समझा, और कई बार अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, और घूम फिर कर जब वो फिर उस तक पहुंचती है, अब कैसा लगेगा कि मैंने इतना विश्वास किया लेकिन फिर भी मुझे धोखा मिला। और कई बार वर्षों पुरानी मित्रता इसके कारण टूट जाती है। एक बार ऐसे ही एक पंडित जी थे, उन्हें शहर में काम था, जाना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे रास्ते के लिए खाना दे दो, शायद पहुंचने में देर हो जाए। खाना लेकर के चले, रास्ते में भोजन के लिए उन्होंने पेड़ के नीचे एक स्थान चुना और वहां बैठे, प्लेट लगाई। इतने में ऊपर जो पक्षी बैठा था उसकी बीट खाने पर गिर गई, तो उनका मन खराब हो गया और फिर उन्होंने शहर जाने का विचार भी त्याग दिया। फिर सोचा किसी और दिन जाऊंगा, घर वापस आ गए। अब पत्नी ने सोचा कि ये शहर गए थे, इतना जल्दी वापस कैसे आ गए, तो पूछने लगी कि आप जल्दी क्यों वापस आ गए। वो नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उनको अपनी पत्नी का स्वभाव पता था, उन्हें पता था कि अगर मैंने इसको कहा माना पूरे गांव में ये बात चली जाएगी। तो बहुत उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही ज्यादा जब उसने जोर दिया तो आखिर उन्होंने उसे बता दिया। लेकिन फिर ये भी कहा कि देख किसी को कहना नहीं, तो उसने कहा मैं क्यों कहूंगी, जैसे सभी कहते हैं। फिर ऐसे ही हुआ कि दूसरे दिन वो पानी भरने के लिए गई, तो उसकी साथी महिलाएं जो आती थी वहां, उसे याद ही नहीं रहा और बात बात में उसने वो बात कह दी। अब कही तो हर एक के सुनने का अपना अपना स्टेज होता है, कोई आधी बात सुनता है, कोई पूरी बात सुनता है। तो एक ने क्या सुना कि पंडित जी के खाने में पक्षी गिर गया, बीट गिरने की बजाय पक्षी गिर गया। फिर उसने किसी को सुनाया जिनको उन्होंने समझा कि पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। फिर और जब बात फैली तो ऐसे फैली कि पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये बात पंचायत तक पहुंची, तो पंचायत ने सोचा कि हमारे गांव में ऐसे चमत्कार दिखाने वाले पंडित जी रहते हैं और हमको पता ही नहीं, उन्हें पंचायत में बुलाना चाहिए। तो बुलाया उनको पंचायत में। अब पंडित जी को पता ही नहीं कि मुझे पंचायत में क्यों बुलाया गया है। और जब सारी बात उन्हें वहां जाकर समझ में आई तो अब वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, कैसे ये बात आ गई कि मैं ये चमत्कार करता हूँ। फिर उनका दिमाग चला कि मैंने अपनी पत्नी को सुनाया था और वो बात फैलते फैलते ये रूप ले चुकी है। अब उनको उससे बचने का उपाय सोचना था कि क्या ऐसा कहा जाए। फिर जब उनको ये कहा गया कि उनके मुंह से पक्षी निकाल करके दिखाएं, तो पंडित जी ने कहा कि जरूर मेरे मुंह से मैं पक्षी निकाल करके दिखा सकता हूँ, लेकिन जो वो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। हाँ, तो सारे लोग चले गए। तो ये कहानी है, लेकिन कहने का भाव है कि कोई बात फैलकर कितने बड़े अनर्थ हो जाते हैं कई बार। और इसीलिए कहावत बनी, घर का भेदी लंका ढाए। कि कहते हैं कि रावण की हार क्यों हुई, क्योंकि विभीषण जो रावण का भाई था उसने रावण के सारे राज राम को खोल दिए। हमारा देश हजारों सालों तक विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम रहा, क्योंकि राजाओं के पास ऐसे भेदिये होते थे जो दुश्मन को जाकर के राज खोल देते थे और वो हमारे राजाओं पर उस कारण विजयी हो जाते थे। तो यहाँ यदि हम कोई बात नहीं समा पाते हैं, कई प्रकार के मनुष्य होते हैं, कुछ होते इतने गंभीर होते हैं कि आप कभी भी उनसे कोई राज की बात नहीं निकलवा सकते, और कुछ होते हैं कि वो जब तक अपने मन की बात कह नहीं देंगे उनको भोजन ही नहीं पचता है। एक बार ऐसे ही परिवार में जैसे सास बहू होते हैं, तो एक सास ने बहू को कुछ कहा उसकी गलती पर, तो उसने सुन लिया, चुपचाप सहन कर लिया। लेकिन जो पड़ोस की बहू थी वो उसकी सहेली थी, उसको जाकर के उसने सारी बात सुना दी कि मैं कितना सहन करती हूँ, मेरी जगह कोई और बहू होती तो कब की अलग हो गई होती, कभी भी साथ में नहीं रहती। वही बहू ने वही बात अपनी सास को कह दी। अब ये दोनों सास आपस में सहेली, जब दोनों मिली तो उसने उसको समझाने की कोशिश की कि उसको अपनी बहू के साथ कैसा करना चाहिए, तो वो उसको आश्चर्य से देखने लगी कि इसको मेरे घर की बात कैसे पता है। आप समझ में आ गया कि कैसे पता है आप संबंध बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, तो ये स्थिति होती है। तो एक योगी व्यक्ति गंभीर होता है स्वभाव से, और वो जानता है कि कौन सी बात कब कहनी चाहिए और कब नहीं कहनी चाहिए। हृदय इतना विशाल होता है कि हम जो बात समाना चाहिए उसे सहज समा सकते हैं, और यदि कहना भी है तो बिल्कुल सही स्थान पर सही भाव से हम वो बात कहते हैं। ऐसे ही तीसरी और चौथी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति। ये दोनों शक्तियां भी हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। बहुत सारी परिस्थितियों व्यक्तियों को हमें परखना होता है, सही है गलत है उचित है अनुचित है, हम ये करें नहीं करें, और फिर हमें निर्णय भी लेना होता है। अगर हम सही निर्णय लेते हैं तो हम सफल होते हैं, और यदि हम सही निर्णय लेने में चूक जाते हैं तो कई बार हमें पश्चाताप भी करना पड़ता है, काश ऐसे नहीं ऐसे किया होता। तो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि एक जौहरी होता है, उसे आभूषणों की परख है, रत्नों की परख है, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान है, उसे पता है कि सोना मिलावट वाला है या खरा सोना है, रतन नकली है या असली है, हीरा भी असली है या नकली है, और उसी आधार पर वो अपने व्यवसाय में सफल होता है। यदि उसके पास ये ज्ञान नहीं हो तो उसे धोखा खाना पड़ सकता है। तो ऐसे ही जिस क्षेत्र में भी हम कार्य करते हैं, यदि उससे संबंधित संपूर्ण ज्ञान हमें है तो हमारे परखने की शक्ति अच्छी होती है। एक डॉक्टर को बीमारी का ज्ञान है तो वो तुरंत मरीज को देखते ही बीमारी को परख सकता है। एक जज को कानून का ज्ञान है तो वो अपराधी के बारे में सुनते ही उसके बारे में सहज निर्णय ले सकता है। और अगर आध्यात्मिक ज्ञान है हमारे पास तो हमारी बुद्धि दिव्य होती है, बुद्धि स्वच्छ होती है, बुद्धि स्पष्ट होती है, और हम व्यक्ति के मनोभावों तक को भी परख सकते हैं। आज मनुष्य का स्वभाव होता है वो अंदर कुछ और बाहर कुछ, वो जो आपके सामने व्यवहार करते हैं जरूरी नहीं है कि उनके मन में आपके प्रति भावनाएं भी वैसी ही हैं। तो यदि हम उन भावनाओं को भी परख पाते हैं, उसको लोग बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, कि जो मनुष्य बोल रहा है जरूर नहीं कि उसका जो भावाभिव्यक्ति है वो भी उसी प्रकार की होगी, उसे हम समझ सकते हैं कि वो अंदर में क्या है, तो उस अनुसार फिर हम उनसे सावधान रह सकते हैं या उनको हम जीवन में संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये परखने की शक्ति की सूक्ष्मता हमें ज्ञान से अनुभव होने लगती है। ऐसे ही निर्णय शक्ति को यहाँ तराजू से दिखाया है। तराजू के तीन भाग हैं, डंडा कांटा और पलड़ा। सही निर्णय के लिए सही तौल के लिए कांटा सीधा होना चाहिए, डंडा संतुलित होना चाहिए और पलड़े बराबर होने चाहिए। तो सही निर्णय लेने के लिए भी हमारी बुद्धि की स्थिति इसी प्रकार होनी चाहिए कि मन एकाग्र हो, संतुलित हो और निष्पक्ष हो। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारे मन की ये स्थिति सहज होती है। मन कितना भी उलझन में है, मन कितना भी परेशान है, लेकिन मन शांत होता है, मन संतुलित होता है और धीरे धीरे हम निष्पक्ष होते हैं, यानी जो पूर्वाग्रह हमारे मन में होते हैं या बीती हुई बातें हमारे मन में, उनसे हम अपने को मुक्त करके निर्णय ले पाते हैं। कई बार परमात्मा की प्रेरणाएं भी हमें अनुभव होती हैं योग में, जिसे हम कहते हैं एक अंतर्दृष्टि हमें प्राप्त होती है और उसके आधार पर हम सही निर्णय ले लेते हैं। एक बार ऐसे ही एक गांव का व्यक्ति, उसके पास गधा था, वो गधा चल रहा था तो उसको एक चमकता हुआ पत्थर दिखा, तो उसे अच्छा लगा, वो पत्थर उठा लिया उसने और उसने सोचा कि ये पत्थर को मैं अपने गधे के गले में लटकाऊंगा तो जो भी इसको देखेगा तो वो आकर्षण करेगा। तो उसने किसी तरह से छेद करके उस पत्थर को अपने गधे के गले में लटका दिया। अब वो जब गांव से गुजर रहा था तो एक जौहरी की नजर पड़ी, तो उसे थोड़ा डाउट हुआ, तो वो निकल करके बाहर आया और उसने उसको पत्थर को हाथ लगाया तो वो समझ गया कि ये हीरा है और इस गधे वाले को ये पता नहीं है कि ये हीरा है। तो उसने उसको पूछा, तुम इस पत्थर को बेचोगे? तो उसने कहा कि ये बिक सकता है। तो उसने कहा हाँ बिक सकता है। तो उसने कहा मुझे 200 रुपए की जरूरत है, तुम 200 रुपया दे दो और ये पत्थर ले लो। तो उसने कहा नहीं, 200 तो ज्यादा है, मैं तुमको 100 दूंगा, 100 रुपया ले लो और ये पत्थर दे दो। तो वो माना नहीं, उसने कहा नहीं मुझे तो 200 की जरूरत है, 100 में मुझे इसको नहीं बेचना है। तो वो चला गया आगे। अब दूसरे जौहरी की नजर पड़ी तो वो बाहर निकला और उसने देखा, फिर उसने भी उससे वही सवाल पूछा, उसने कहा तुम इस पत्थर को बेचोगे? तो उसने कहा हाँ बेचूंगा, लेकिन 200 रुपया दोगे तो बेचूंगा। तो उसने तुरंत 200 रुपया निकाला और उसे दे दिया और वो पत्थर ले लिया। अब जो वो पहले वाला जौहरी था वो सोचने लगा कि 100 रुपए के पीछे मैंने ये हजारों रुपए का हीरा गंवा दिया, तो क्या बुरा है, अगर वो 200 ले रहा है तो 200 दे देना चाहिए। ऐसे सोच के वो वापस आया और उसका पीछा करके, तो उसने उसको बोला कि तुम 200 रुपया ले लो और मुझे वो पत्थर दे दो। तो उसने कहा लेकिन अभी तो मैंने बेच दिया, वो किसी दूसरे ने खरीद लिया मेरे से और 200 रुपया दे दिया। उसने कहा कि मूर्ख तुमने ये क्या किया, तुमको पता नहीं था कि ये हीरा है और वो हीरा लाखों रुपए का है और तुमने उसे सिर्फ 200 रुपए में बेच दिया। तो वो उसको देखने लगा, उसने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये हीरा है, तो मेरे से बड़े मूर्ख तो तुम हो कि 100 रुपए के पीछे तुमने हीरा छोड़ दिया। तो देखिए निर्णय लेने में वो उस समय चूक गया, तो इतना बहुमूल्य हीरा उसके हाथ से निकल गया। तो कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसे ही चूक जाते हैं अगर हम सही समय पर निर्णय नहीं लेते। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। हमारे जीवन में समस्याएं आती ही हैं और हमें उनका सामना करना ही पड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, किसी हमारे प्रियजन की मृत्यु होती है, समीप संबंधी हैं, कई बार लोग इतने दुखी होते हैं कि जीवन में दिनों तक, महीनों तक, कई बार सालों तक सामान्य नहीं हो पाते। ऐसे लगता है कि जैसे उसके साथ उनका भी जीवन समाप्त हो गया और उनको दवाइयां खा करके अपना जीवन गुजारना पड़ता है। ऐसे कई लोग हमसे मिलते हैं, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति समझता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर की मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। उस आत्मा का जब तक हमारे साथ कर्म संबंध था तब तक वो हमारे साथ थी। आज वो कर्म संबंध समाप्त हुआ है तो जहां उसका रोल है, जहां उसका पार्ट है, वो दूसरे नाम रूप से अपना पार्ट बजाने के लिए वहां गई है। तो उनके भविष्य जीवन के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं, उन्हें हम शांति का दान देते हैं, क्योंकि हम ये भी सत्य जानते हैं कि जो चला गया वो वापस लौट कर आने वाला नहीं है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति, उनके जवान बेटा, इकलौता बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई। अब एक ही बेटा था, बहुत प्यार था अपने बेटे से, तो फिर उसकी मृत्यु के बाद कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन वो अपने बेटे की याद में रोते नहीं थे। कई बार ऐसी आत्माएं सपने में आती हैं, तो कुछ महीनों के बाद उन्होंने स्वप्न देखा कि उनका बेटा फरिश्तों की सभा में है और सभी के हाथ में एक कैंडल है, वो चल रही है, लेकिन उनके बेटे के हाथ में जो कैंडल है वो बुझी हुई है। तो उन्होंने उसको पूछा, बेटा आपकी कैंडल क्यों बुझी हुई है? तो उसने कहा कि पिताजी मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरी कैंडल जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप रोज रोते हैं, आपके आंसू इस पर गिरते हैं और मेरी कैंडल बुझ जाती है, प्लीज आप रो नहीं, आप रोएंगे तो मेरे जीवन पर असर होता है। तो यानी हम दुखी होते हैं तो हमारा दुख उस आत्मा तक भी पहुंचता है। हम जैसी भावनाएं रखते हैं वो भावनाएं उस आत्मा तक पहुंचती हैं, तो हमारा फर्ज होता है हम उसको सहयोग दें। कई बार कई लोग कहते हैं बहन जी हम रोना नहीं चाहते हैं सचमुच, लेकिन हमें लोगों को दिखाने के लिए रोना पड़ता है, तो दिखाने के लिए रोना चाहिए। दोनों प्रकार की स्थिति होती है कि या तो बहुत दुखी होते हैं और या फिर इंतजार कर रहे होते हैं कि ये कब जाएं, और उनके मृत्यु पर दिखाने के लिए रोना होता है। लेकिन जो भी हमारा कर्तव्य है उस आत्मा के प्रति, वो हमें पालन करना है। और भी कई समस्याएं जीवन में आती हैं, मानो कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो असाध्य बीमारी है, कई बार बिजनेस में लॉस हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जो भी परिणाम मेरे जीवन में आ रहे हैं उसका कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता है। तो हम उस प्रयोजन को समझते हैं और उसके आधार पर हम अपने भविष्य कर्मों के लिए सावधान रहते हैं, हम धैर्य रख पाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कल भी हमने बात की कि अगर किसी परिस्थिति में हमारा बुरा हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा लाभ भी है, भला भी है। जो गीता में कहा, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा होगा। इस पर हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बोध कथा आती है कि एक बार एक राजा का बुद्धिमान मंत्री था और वो अपने हर काम में मंत्री से सलाह लेता था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई, मंत्री उसके साथ था तो उसने मंत्री को दिखाया कि मंत्री जी देखो मेरी उंगली कट गई। लेकिन मंत्री ज्ञानी था तो उसने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आ गया कि अच्छा कैसे हुआ, मेरी उंगली कट गई, मुझे इतना दर्द हो रहा है और मंत्री जी कह रहे हैं अच्छा हुआ, ये अब मेरे वफादार नहीं है, और गुस्से में आकर के उन्होंने उनको जेल में बंद करवा दिया। अब राजा को शिकार खेलने का शौक था, थोड़े दिनों में वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और शिकार का पीछा करते करते कई बार कितना घने जंगल में अंदर चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, और वहां कबीले वाले लोग रहते थे। उस जमाने में कबीले के लोग कई बार अपनी देवी को मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, इस तरह से देवी को प्रसन्न कर। तो वो किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे तो राजा को पकड़ लेते हैं। अब राजा को जब सारी बात समझ में आती है तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं आपका राजा हूँ, आप मेरी बलि चढ़ाएंगे। तो कहते हैं राजा तो सर्वोत्तम होता है और राजा जैसी बलि पाके हमारी देवी बहुत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और वो ले जाते हैं उसको मंदिर में, वहां पुजारी देखता है हाँ बलि संपूर्ण है या नहीं, क्योंकि नियम होता है बलि का, तो देखा उसका अंग भंग है, उंगली कटी हुई है, तो राजा को देवी स्वीकार नहीं करेगी। तो पुजारी कहता है इसको छोड़ दो, कोई दूसरे मनुष्य को ढूंढो, देवी नाराज हो जाएगी। तो जब राजा छूटता है तो उसे अब मंत्री की बात याद आती है, उसने कहा था कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, सचमुच आज उंगली कटी हुई थी इसीलिए बलि चढ़ने से बच गई। जैसे ही वो राज्य में पहुंचता है तो वो सारी घटना अपने मंत्री को सुनाता है और फिर कहता है कि मंत्री जी मुझे क्षमा कर दीजिए, आज मुझे आपकी बात समझ में आई, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। उसने कहा नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ। उसने कहा कैसे? उसने कहा देख महाराज, मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ, आज मैं जेल में था इसीलिए आपके साथ नहीं था, और अगर मैं आपके साथ होता तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती, हम दोनों ही बच गए, आप भी बच गए और मैं भी बच गया। तो देखने में घटना कैसी थी, दोनों के लिए बहुत बुरी, लेकिन भविष्य में दोनों के लिए ही उसमें लाभ छुपा था, भले ही वो थोड़ा भविष्य के पर्दे में था। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कुछ बातें हमें तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ समय के बाद हमें समझ में आता है कि इसमें हमारे जीवन का कल्याण छुपा था। वो हमारी छिपी हुई शक्तियों को, गुणों को भी जागृत करते हैं, उनका भी विकास करते हैं जब ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। और एक राजयोगी ये भी समझता है ईश्वर मेरे साथ है, परमात्मा मेरा साथी है, और जब भगवान हमारा साथी है, जब सर्व समर्थ मेरे साथ है, तो हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे महाभारत में हम सुनते हैं कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, तो एक बार अभिमन्यु को जब धोखे से मार दिया गया, गुस्से में आकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त तक यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद को भी जिंदा चिता में जला दूं। और कृष्ण जानते थे ये इतना आसान नहीं है, और यदि अर्जुन जीत नहीं पाया तो ऐसा ना हो कि कहीं अर्जुन ऐसा निर्णय ले ले। तो उस रात को जब शिविर में सभी विश्राम कर रहे थे, तो कृष्ण अगले दिन के युद्ध की योजना बना रहे थे, और उनकी नजर पड़ी अर्जुन पर। अर्जुन से वो कुछ बात करना चाहते थे, तो देखा वो तो सो रहा है और बड़ा निश्चिंत। तो उन्होंने उसको उठाया, कहा अर्जुन तेरे को याद नहीं है कल तुमने क्या प्रतिज्ञा की है? तो अर्जुन उठा, उसने कहा कि माधव मुझे याद है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप मेरे साथ हो, और जब आप मेरे साथ हो तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, आप मेरी चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम भगवान के ऊपर अपनी चिंताएं सौंप सकते हैं कि जब ईश्वर मेरे साथ है, मेरी चिंता करने वाला वो है, तो मुझे अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है। और छठी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है सहयोग की शक्ति। एक राजयोगी सभी का सहयोगी होता है, क्योंकि वो ये जानता है कि हम सभी आत्माएं हैं, इस संसार में हम परम धाम से आए हैं, एक ही परम पिता की हम संतान हैं, और इसीलिए आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी संस्कृति में आज तक हम सुनते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम, पर सही अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम ये पूरा विश्व एक परिवार कैसे हैं हम समझ पाते हैं। और इसीलिए हर आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना रहने लगती है। ऐसे नहीं कि 4, 6, 10 लोगों का परिवार मेरा परिवार है और इसीलिए इन्हीं के प्रति मेरी सहयोग की भावना है, इनके प्रति ही मेरी शुभ भावना है, नहीं। लेकिन पूरे विश्व की आत्माओं में यदि किसी को हमारे सहयोग की जरूरत है और हम कर सकते हैं तो हम करते हैं। और जहाँ सहयोग होता है, कहते हैं एक और एक दो होता है, लेकिन सहयोग में एक और एक 11 होता है, इतनी शक्ति बढ़ जाती है कि बड़े बड़े कार्य सहज संभव हो जाते हैं। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि जब गोकुल पर बाढ़ का संकट था, तो श्री कृष्ण ने एक अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, ऐसा गायन है। लेकिन केवल श्री कृष्ण की उंगली नहीं, लेकिन उनके साथी गोप गोपियों की भी एक एक उंगली का उसमें सहयोग था। तो ये वास्तव में कोई पहाड़ उठाने वाली बात नहीं है, ये परमात्मा के कार्य का यादगार है कि जब परमात्मा इस विश्व में विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो वो कोई जादू मंत्र की छड़ी नहीं घुमाते हैं जिससे संसार का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसमें उनके साथ साथ आत्माओं के परिवर्तन का सहयोग होता है। और जब एक एक आत्मा का परिवर्तन होता है, ये विश्व आत्माओं से बना हुआ है, हम ही इसे कलयुग बनाते हैं, और जब यही मनुष्य आत्माएं परिवर्तन हो जाती हैं, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी होती हैं, तो इसी को हम सतयुग बना सकते हैं। कई बार ये भी पूछते हैं कि इतना बड़ा कार्य है ईश्वरीय कार्य, इतना विशाल कार्य संस्था का कैसे चलता है, तो वही सहयोग की शक्ति से। जो आत्मा जिस तरह से सहयोग कर सकती है, कोई तन से सहयोग करते हैं, कोई धन से सहयोग करते हैं, कोई अपने मन से भावनाओं से सहयोग करते हैं, जो जिस तरह से सहयोग कर सकते हैं वो इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग करते हैं। फिर कई बार कुछ सोचते हैं कि हम अकेले कहीं कुछ करेंगे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इतनी बड़ी दुनिया है उसमें एक के परिवर्तन से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। एक बार जंगल में एक आग लगी, और एक चिड़िया तालाब पर जाती थी, एक चौंच में पानी भर के वो डाल रही थी आंख पर, तो जानवर उसकी हंसी उड़ाने लगे, कहा चिड़िया तुम क्या समझती हो, तुम्हारे ये चौंच पर पानी से आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा मुझे पता है नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी भविष्य में इस जंगल की आग का जिक्र होगा, मेरा नाम भागने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो जब हाथियों ने सुना तो उन्होंने कहा ये छोटी चिड़िया इतनी हिम्मत कर सकती है, हम तो आग बुझा ही सकते हैं। तो उन्होंने तालाब पर जाकर सूंड में पानी भर के आग पे डालना शुरू किया और थोड़े समय में आग बुझ गई। तो देखने में आग किसने बुझाई? हाथियों ने बुझाई। हाँ, लेकिन आग बुझाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, हिम्मत कहाँ से मिली? उस छोटी चिड़िया से। तो हम कहीं भी कुछ कार्य कर रहे हैं, हमने परिवर्तन किया, हमसे अनेक जुड़े हुए होते हैं और वो प्रेरणा उन तक जाती है, उनमें भी वो हिम्मत आती है। महात्मा गांधी को जब आजादी का संकल्प आया तब महात्मा गांधी बिल्कुल अकेले थे, लेकिन जब उन्होंने हिम्मत रखी, दृढ़ संकल्प रखा, तो धीरे धीरे पूरा भारत उनके साथ जुड़ गया और भारत आजाद हुआ। ऐसे ही हम कहेंगे जब परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ईश्वरीय कार्य प्रारंभ किया तब ब्रह्मा बाबा बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी, उन्होंने वो दृढ़ संकल्प किया, तो आज धीरे धीरे ये ईश्वरीय कार्य इतना विशाल रूप ले चुका है और आने वाले समय में ये पूरे विश्व में परिवर्तन हो जाएगा। सहयोग की शक्ति से सब कुछ संभव है। और ऐसे ही सातवीं शक्ति जो हमें योग अभ्यास से प्राप्त होती है वो है विस्तार को सार में लाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। विस्तार को सार में लाने की शक्ति में आप देख रहे हैं चित्र में कछुआ है। कछुआ प्रकृति में ऐसा प्राणी है जिसके शरीर पर एक कठोर खोल होता है और वो अपने अंगों को उसमें समेटे रहता है, सुरक्षित रहता है। जब उसे खाना होता है, चलना होता है, तब वो अपने अंग बाहर निकालता है, खाता है और फिर वापस अपने अंगों को समेट लेता है और इस तरह से वो बचा रहता है। ऐसे ही एक योगी का जीवन होता है। हम इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, मन बुद्धि को कार्य में लगाते हैं, अपने कार्य को कुशलता से करते हैं और जब कार्य समाप्त हो जाता है तब हम कर्मेंद्रियों से मन बुद्धि को समेट कर अपनी आत्मा में स्थित कर लेते हैं। आत्मिक शांति, आत्मिक सुख और आत्मिक आनंद का अनुभव हम करते हैं, यानी परिस्थितियों से न्यारा हो जाना। और यहाँ तक कि हम इस संसार से भी न्यारा अपने मन को कर सकते हैं, मन को हम परम धाम में ले जाते हैं, परमात्मा स्मृति में मन को स्थिर करते हैं तो मन की स्थिति ऊंची हो जाती है। जैसे एक एरोप्लेन है, वो ऊंचाई पर उड़ता है तो नीचे कितने भी पहाड़, नदियां, बाधाएं हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ऊंचा है। तो जब मन की स्थिति ऊंची होती है तो संसार की परिस्थितियां कैसी भी हैं वो हमें छू नहीं पाती, यानी उनके प्रभाव से हम ऊंचे हैं। और इस तरह से जब चाहे हम शामिल हो जाएं, जब चाहे हम न्यारे हो जाएं, ये कला एक योगी के अंदर होती है। बहुत कभी मन विस्तार में चला जाता है, किन्हीं घटनाओं के विस्तार में मन उलझता है और उसको हम आत्मा में स्थित कर लेते हैं, बिंदु रूप में स्थित हो जाते हैं। तो जैसे एक मकड़ी अपने जाले को फैलाती है और फिर अपने जाले को खा भी लेती है और उसको एकदम समेट कर आत्मस्वरूप में आ जाना, तो न्यारा और प्यारा होना, जिसको हम कहेंगे कमल फूल समान जीवन, ये योगी का जीवन होता है। से ही समेटने की शक्ति, हम सब जानते हैं कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और इसीलिए कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। लेकिन शायद जीवन भर हम इस सत्य को भूले रहते हैं और हम समझते हैं जीवन सदा ही है, सदा ही चलने वाली है। और मोह माया में विषयों में मन फंसा रहता है। उसे समेटने का इरादा हमारा कभी भी नहीं होता है। तो संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सोचते हैं मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा है ही, आपका भी मेरा कैसे हो जाए। इसे हम कौन सी वृत्ति कहेंगे? स्वार्थी। तो ज्यादातर वर्तमान समय ये वृत्ति देखने में आती है। दूसरे होते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, आपका मुझे नहीं चाहिए लेकिन जो मेरा है वो हम आपको नहीं देंगे। मानवीय वृत्ति, सहज मानवीय स्वभाव कि मेरे पर तो मेरा ही अधिकार है। और जो तीसरे होते हैं, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना तो हम कुछ लेकर के आए हैं और ना ही हम इस संसार से अपने साथ कुछ ले जाने वाले हैं। जो कुछ मिला है वो यही मिला है, हम यूज कर रहे हैं, यही छोड़कर चले जाएंगे। इसको हम कहेंगे आध्यात्मिक वृत्ति। और इस तरह से जब ये सत्य हम समझते हैं तो दुनिया में हम कहते हैं कि एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक व्यक्ति था, उसके तीन मित्र थे। एक मित्र बहुत घनिष्ठ मित्र था जो सदा ही उसके साथ रहता था, दिन रात उसके साथ उठना बैठना खाना पीना। एक दूसरा मित्र था जो शहर में दूसरी जगह रहता था लेकिन कुछ दिनों में मिलना होता था। तीसरा था दूसरे शहर में रहता था तो कभी महीनों में साल में मिलना होता था, पर दोस्ती थी। अब इसको किसी ने गलत मुकदमे में फंसा दिया। उसने हत्या की नहीं थी लेकिन उसके ऊपर हत्या का आरोप आ गया और सारे गवाहों से सिद्ध भी हो गया कि इसने हत्या की है और उसे उम्र कैद हो गई। उसने अपील की कि जब मैंने हत्या की नहीं है तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है। तो जज ने उसे समझाया कि देखो, अगर तुम कोई गवाह अपने पक्ष में पेश करोगे तो ही तुम्हारी सजा बदल सकती है, नहीं तो सिद्ध हो चुका है कि तुमने हत्या की है। तो उसने सोचा मेरे दोस्त हैं, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। तो उसने सबसे पहले अपने उस दोस्त को कहा जो दिन रात उसके साथ था। उसने कहा दोस्त तुम मेरी गवाही दो, तुम जानते हो। तो उसने कहा कि दोस्त मुझे कोर्ट से और ये कचहरी में गवाही देने से बहुत डर लगता है, मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए अगर कोई और मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। उसने कहा कि नहीं, गवाही ही देनी है, अगर गवाही नहीं दोगे तो मेरी सजा नहीं बदलेगी। लेकिन वो किसी भी तरह से तैयार नहीं हुआ। उसको बहुत निराशा हुई क्योंकि सबसे ज्यादा आशा उसको उसी से थी। दूसरे दोस्त से उसने पूछा तो उसने कहा दोस्त मैं तुम्हारे लिए अदालत तक आ जाऊंगा, लेकिन वो कटघरे में खड़े होकर के बोलना उसकी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, वो मैं नहीं कर सकता। उसने कहा नहीं दोस्त, गवाही ही देनी है, अगर गवाही नहीं दोगे तो मेरी सजा नहीं माफ होगी। तो वो भी तैयार नहीं हुआ। तीसरे से तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं, पर उसने सोचा पूछ लेते हैं। तो उसने पूछा उसको, तो उसने कहा कि दोस्त मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हारी गवाही दूंगा और मैं सच्ची गवाही दूंगा। ऐसे ही आत्मा के भी तीन दोस्त हैं। सबसे पहला दोस्त ये शरीर है। 24 घंटे जीवन भर शरीर और आत्मा का साथ है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो सबसे पहले ये शरीर ही छूट जाता है। हम सारी प्रवृत्ति जो भी करते हैं वो हमारे शरीर के लिए होती है। हम धन कमाते हैं, हम मकान बनाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, सब कुछ, सारी प्रवृत्ति शरीर के लिए ही चल रही है जीवन भर, लेकिन शरीर छूटता है। फिर दूसरा हमारा मोह होता है, जिसे हम मेरा समझते हैं। दोस्त वो हमारे मित्र संबंधी हैं। वो मित्र संबंधी हमें शमशान घाट तक, अदालत तक अंतिम विदाई देने आ जाते हैं। या धन संपत्ति है, कितना भी धन संपत्ति है, कितना भी कोई मिलियनर क्यों ना हो, एक पैसा भी वो अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन भगवान के दरबार में जो सच्ची गवाही देते हैं वो है हमारा तीसरा दोस्त, जिस पर हमारा ध्यान सबसे कम जाता है। और वो कौन सा दोस्त है? वो है हमारे कर्म। और वो कर्म ही भगवान के दरबार में हमारी गवाही देते हैं। तो एक राजयोगी इस शक्ति को अपने जीवन में समझ पाता है और इसीलिए वो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी समय निकालते हैं। सारा समय केवल शरीर निर्वाह में, संबंधों के निर्वाह में, अपने कर्म करने में ही नहीं, लेकिन अपनी आत्मिक उन्नति करके कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी वो समय निकालते हैं। और वही अविनाशी कमाई है जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर जाती है। बाकी सब कुछ विनाशी है, सब यहीं रह जाने वाला है। और इस तरह से ये जो शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, इन शक्तियों के द्वारा हम विकारों पर विजय पाने लगते हैं। काम विकार पर विजय होती है क्योंकि हमारी आत्मिक दृष्टि होती है, आत्मिक दृष्टि शुद्ध दृष्टि है। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती, आत्मा देह की सीमाओं से परे है। क्रोध पर हमारी विजय होती है क्योंकि शांति की शक्ति आ जाती है, हमारे अंदर धैर्य होता है, सहन शक्ति, प्रेम, क्षमा भाव, उससे हमारा क्रोध समाप्त होने लगता है। लोभ समाप्त होता है क्योंकि हम स्वार्थी नहीं परोपकारी बनते हैं, संतोष का गुण हमारे जीवन में आता है। मोह समाप्त होता है क्योंकि हम ट्रस्टी भाव से जीवन में कर्म करने लगते हैं, हमें पता है कि ये सब विनाशी है, साथ जाने वाला नहीं है। अहंकार समाप्त होता है क्योंकि निमित्त भाव हमारे जीवन में आता है, हम समझते हैं करण करावनहार परमात्मा है। और मैंपन, मेरापन समाप्त होने से नम्रता आती है और इस तरह से जीवन परिवर्तन होने लगता है। हम स्वयं भी जीवन में सफल होते हैं और परमात्मा के भी इस विशाल विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सहयोगी बन जाते हैं। तो ये थी राजयोग के द्वारा प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियां और गुण। ओम शांति। और अभी हम कुछ समय राजयोग का अभ्यास करेंगे। आप सभी सीधे होकर बैठ जाएंगे, अपने मन को आसपास के व्यक्तियों से, आसपास के वातावरण से, आवाजों से न्यारा कर लें। नेत्रों को स्वाभाविक रूप से खुला रखें और तैयार करें अपने मन को एक रूहानी यात्रा के लिए, अंतर यात्रा के लिए, जो मन की यात्रा ईश्वर की ओर है। मस्तक के मध्य में मैं एक चमकते हुए सितारे के समान चैतन्य शक्ति, दिव्य शक्ति आत्मा हूं। मैं देह से न्यारी हूं, अचर अमर अविनाशी हूं। इस संसार में कर्म करने के लिए मैंने कर्म इंद्रियों का आधार लिया है। अपने निजी स्वभाव में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मुझे पसंद है। शांति में ही सुख है, शक्ति समाई हुई है। मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से भी पार, परम धाम है। जहां सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है, संपूर्ण शांति है। ले जाएं मन को परम धाम में। और अपने अंतर चक्षु से परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखें। परमात्मा भी मेरे ही समान ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज है। उनका दिव्य प्रकाश का आलोक पूरे परम धाम में फैला हुआ है। वो शांति के सागर हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के सानिध्य में शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरे मन के विचारों की गति शांत होती जा रही है। वो सर्वशक्तिवान है। ईश्वरीय शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं स्वयं को शक्तिशाली और समर्थ अनुभव कर रही हूँ। जब परमात्मा मेरे साथ है, उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं, तो कोई भी परिवर्तन लाना, अपने संस्कारों को बदलना मेरे लिए संभव है। शिव बाबा ही मेरे सच्चे माता पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। मुझे सतज्ञान देने वाले हैं, सद्बुद्धि देने वाले हैं, मेरे कल्याणकारी परम हितैषी हैं। मैं स्वयं को बहुत भाग्यवान अनुभव करती हूँ। परमात्मा का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है और मैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगी। वो ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। उस ईश्वरीय प्यार को पाकर मेरे जन्म जन्मांतर की खोज समाप्त हो गई है। शिव बाबा के साथ में मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ।
और इन अनुभवों को लेकर अब आ जाएं पुनः इस भौतिक जगत में, लेकिन अब मेरे मन की स्थिति पहले से भिन्न है। मैं पहले से अधिक शांत, अधिक शक्तिशाली हूँ। अपने सारे दिन के कार्य व्यवहार में मैं इन अनुभवों को प्रयोग करूंगी। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति।